जयदेवला पुस्तक 10वी लेक्चर नंबर 1
ओम नमः सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम शुद्धात्मने नमः नमो
नमो सीताणं नमो
आयरियाणं
नमो वज्रायाणं
नमो लोये
सौवसाहूणं
वेदग 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 भवेदगं वेदगन्तसंसिद्धं सिद्धं प्रणमीय
शिरसा वोच्चं वेदगमहायारमः।
इसका अर्थ देखते हैं अभी हम। पहले हमने मंगलाचरण किया है। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 10वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 1 पर आ गए हैं। अभी जो हमने मंगलाचरण बोला है उसका अर्थ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अर्थाधिकार देखेंगे तो 7वां है, परंतु पुस्तक अपनी 10वीं चलती है। अभी इसको हम पढ़ेंगे। देखो, वेदग वेदग वेदगम अवेदगम, वेदग वेदग दो बार बोल, फिर वेदक और अवेदक बोला, और वेद ग्रंथ संसिद्धम। तो आचार्यों की कैसी बुद्धि है कि उस एक शब्द के ऊपर अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ सहित उन्होंने रचना की। तो कहते, जो सब वेदकों में अतिशय वेदक है, अर्थात चराचर विश्व के ज्ञाता है। वेदक वेदन करने वाला, वो वेदक यानी ज्ञान करने वाला, वेदन करने वाला नहीं जानने वाला। तो समस्त जानने वालों में जो अतिशय वेदक है नहीं, वो अनंत ज्ञानी जो है, अर्थात चराचर विश्व के ज्ञाता है, जो शुभाशुभ कर्म फल के वेदन से मुक्त है। ये कहाँ से निकाला? तो कर्म के उदय को भी वेदक कहते, जैसे हम ना वेदक सम्यक, यानी क्या, वहाँ उसका उदय चल रहा है और उसको भूखता है जीव। कर्म के उदय के भोगने वाले जीव को भी वेदक कहते हैं। तो कहते, जो शुभाशुभ कर्म फल के वेदन से मुक्त है, ये कहाँ से निकाला? वेदगम अवेदगम, अवेदक शब्द है ना बीच में, वो म को आधा आधा करो, उसमें से अ निकालो, तो अवेदक शब्द तैयार हुआ। और वेद ग्रंथ संसिद्धम, वेद ग्रंथों से जिनके अस्तित्व की सिद्धि होती है। ये वेद ग्रंथ क्या होते हैं? ये आराधना में आता है ना, चारों वेद वगैरह वगैरह, तो लोग पूछते हैं ये 3 वेद तो हमने सुने, 4 वेद कहाँ से लाए? अनुयोगों को वेद कहा है वहाँ। अन्य मतियों में भी उनके पुराण ग्रंथों में थे, वो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। तो ये जो वेद है ना, वो जो ग्रंथों को वेद कहते हैं। तो ये वेद ग्रंथ संसिद्धम, वेद ग्रंथ है ना जिनागम के, जो चारों अनुयोग है। तो जिनागम के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जिनकी सिद्धि होती है अस्तित्व की, ऐसे कौन है? ऐसे सिद्ध परमेश्वरी, अरिहंत परमेश्वरी। तो साक्षात हम दर्शन करते हैं, लोग उन्हें देखते हैं ना, समोशरण में जाते भी हैं। आचार्य उपाध्याय साधु तो हमें पता है कि वे तो हमारे इसी क्षेत्र में रहते हैं, परंतु सिद्ध भगवान तो कहाँ है पता नहीं है, हमें तो दिखाई नहीं देते हैं। तो उनका पता कैसे चला? तो कहते हैं वेद जिनागम से हमें उसका पता चला। जिनागम के द्वारा सिद्धों की सिद्धि होती है, ये बात बताना चाहते हैं। उनके अस्तित्व का हमें पता चलता है। उन सिद्ध परमेश्वरी को सिर से प्रणाम करके सिद्धम प्रणमीय सिरसा, वोच्छम मैंने अभी बताता हूँ, व्याख्यान करता हूँ, वर्णन करता हूँ, किसका? वेदग महाहियार महम अहम वोच्छम, मैं व्याख्यान करता हूँ किसका? वेदग महाहियारम, वेदक नाम के जो महा अधिकार है उसका मैं व्याख्यान करता हूँ। इस तरह से यहाँ मंगलाचरण करके अभी ग्रंथ की शुरुआत होती है यहाँ से। नहीं नहीं, सब जानने वाले सब जीव है, सब जानने वालों में अतिशय जानने वाले यानी अनंत ज्ञानी ऐसे जो सर्वज्ञ भगवान है उनकी बात है। अब हम आते हैं यहाँ दो पृष्ठ पर, सूत्रों से शुरुआत करेंगे। वेदगेति अनुयोगद्दारे दोन्नी अनुयोगद्दाराणि तम जहा उदयोच उदीरणाच। वेदक अनुयोग द्वार के, वेदक इस अनुयोग द्वार के लिखा है परंतु
वेदक
ये तो हिंदी में वो इस नहीं डाले तो भी उसकी वाक्य रचना होती है। तो वेदक अनुयोग द्वार के दो अनुयोग द्वार है यानी उसके दो अधिकार है या दो में विभाजित है, यथा उदय और उदीरणा। वेदक यानी कर्म का उदय, तो वो उदय स्थिति पूरी होने पर हो सकता है और उदीर्ण होके भी
हो सकता है,
तो वहां उसको भी वेदक कहेंगे। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, यथा जो यह कषाय प्रावृत के 15 अर्थाधिकारों में वेदक नाम का छठा अनुयोग द्वार है उसमें ये दो अनुयोग द्वार हैं। वैसे तो यहाँ सातवां कह दिया था अभी अभी, उसका भी कारण बताएंगे। सातवां अर्थाधिकार बताया है और यहाँ कहते छठवां अनुयोग द्वार है। 15 अनुयोग द्वार जो है पहले पुस्तक में हमने देखे थे, तो उसमें से ये छठा नंबर का। वे कौन है? इस प्रकार शिष्य के अभिप्राय के अनुरूप आशंका करके स्वयं प्रश्न उठाकर उदय और उदीर्णा इस प्रकार उनका नाम निर्देश किया। यानी ये उसी के दो भेद है वेदक नाम के अर्थाधिकार के। प्रकृत में कर्मों के यथाकाल उत्पन्न हुए फल के विपाक का नाम उदय है। क्या कहना चाहते? उदय किसको कहना? कर्म यथाकाल, यथा क्या लेने, यथा योग्य काल में उसका फल मिलता है तो कर्म के फल मिलना उसका नाम है उदय। फल का विपाक, विपाक यानी उसका रस मिलता है, उसका जो अनुभाग जीव को, उसका जो कोई निमित्त नैमित्तिकपना बनता है तो उसको कहेंगे उसका उदय हुआ। कर्मों के उदय का नाम उदय है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। परंतु ये उदय कब कहेंगे हम? स्थिति पूरी होकर ऐसा काल में उदय में आते हैं। उदय में आते हैं वो कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं और उसी समय उसका फल मिलता है। परंतु जिन कर्मों के उदय का काल प्राप्त नहीं हुआ उनका उपाय विशेष से पचाना उदीर्णा है। पचाना यानी उसका पाक लाना, पाक लाना यानी उसको उदय में लाना। जिसको अभी स्थिति पूरी नहीं है उनको उपाय विशेष यानी विशेष कारण के यानी निमित्त से वो क्या होते हैं? उसकी उदीर्णा होती है यानी वो जल्दी उदय में आते हैं। क्योंकि अपक्व का परिपाचन करना उदीर्णा है। जिसे अभी आम का सीजन गया ना तो क्या कहते हैं, कैसी वो हरे रंग की कैरी लाते हैं और क्या करते हैं,
केमिकल से
पकाते हैं उसमें वो पाल में डाल के रखते तो पक जाता है। तो ये उपाय विशेष हुआ
या तो पचाना उदी, अरे निर्जला की अपेक्षा से लिए
पचाना है उसका उदय लाना। कर्म देखो स्थिति पूरी होने पर उदय आना उसको उदय कहेंगे। और जिसकी अभी स्थिति पूरी नहीं हुई परंतु ऊपर से नीचे आते हैं निषेकों में से परमाणु और जल्दी उदय में आते हैं उसको उदीर्णा। गुण श्रेणी की क्यों बात है? सामान्य जीवों को नहीं होती क्या मिथ्या दृष्टि की? उदीर्णा की जो इन जनरल बात कर रही हूँ, उदय और उदीर्णा सभी कर्मों में होती रहती है। तो कहते अपक्वा अपक्व का परिपाचन करना उदीर्णा है, ऐसा वचन है, कहा भी है ऊपर एक उक्तम च करके एक वहां गाथा बताई है, उत्तम च ये तो उत्तम ही तो प्राकृत है ना, प्राकृत में उत्तम कहा, संस्कृत में हम उत्तम कहते हैं।
उत्तम
कालेन उवाएन पच्यन्ति जहावण फलायन सह कालेन तवेन पच्यन्ति कयायिकं मायिन। इसका अर्थ बताते हैं, देखो जिस प्रकार वनस्पति के फल परिपाक काल के द्वारा या उपाय के द्वारा, क्या कहते हैं, जैसे वनस्पति के जो फल है, वृक्षों के जो फल है, वो अपने काल में यथायुग काल में पकते हैं, वृक्ष पर रहते हुए ही पकते हैं। तो कहते परिपाक काल कहा उसका, उसको पकने का जो काल लगता है वनस्पति के ऊपर ही, उसको कहेंगे परिपाक काल। तो वनस्पति के फल परिपाक काल के द्वारा या उपाय के द्वारा, उपाय ने अभी उसको हमने निकाला, पाल में रखा, अभी आपकी भाषा में कोई केमिकल डाला, आर्टिफिशियल मेथड जो कुछ है, उपाय के द्वारा परिपाक को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार किए गए कर्म परिपाक काल के द्वारा या तप के द्वारा पचते हैं। ये तप की मुख्यता से यहाँ बात की है, वो जल्दी उदय में लाते हैं, उसके उत्कर्षण वगैरह जो कुछ उदीर्णा होती है उसकी बात यहाँ ली है। इस प्रकार उदय और उदीर्णा का जिन अनुयोग द्वारों में कथन किया जाता है वे अनुयोग द्वार भी उन्हीं नाम वाले होते हैं। उसको उदय अनुयोग द्वार और उदीर्णा अनुयोग द्वार कहेंगे, उस अनुयोग द्वार का ही नाम वही रखेंगे। शंका, उदय और उदीर्णा की वेदक संज्ञा कैसे है? आप वेदक कह रहे थे उसमें उदीर्णा उदय की बात क्यों कह रहे हो? समाधान, नहीं, क्योंकि उदय और उदीर्णा दोनों ही सामान्य से वेद्यमान है। इस अपेक्षा यानी कर्म का जो उदय है उसका वेदन किया जाता है, इस अपेक्षा से उन दोनों की उक्त संज्ञा के सिद्ध होने में कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि उदीर्णा पर भी वो फल तो होता मिलता है जो कुछ यथायोग्य है। तथ्य 44 सूत्र गाहाओ, वेदक नाम के इस अनुयोग द्वार में चार सूत्र गाथाएं हैं। ये मूल सूत्रों की बात है, तो इसमें चार गाथाएं, अभी तो हमने तीन गाथाओं के ऊपर नौ पुस्तकें हो गई, अब पांच हो गई, पहले पांच हुई थी। वेदक नाम के इस संयोग द्वार में चार सूत्र गाथाएं हैं, उदय और उदीर्णा, आगे आने वाली चार हैं इस तरह। उदय और उदीर्णा इन भेदों से युक्त वेदक संज्ञा वाले इस महाधिकार में, यानी ये जो वेदक नाम का महाधिकार है उसके दो भेद हैं, उदय अधिकार और उदीर्ण अधिकार। इसमें गुणधर आचार्य के मुख कमल से निकली हुई ये जो गाथाएं हैं वो कषाय पाहुर की, गुणधर आचार्य ने उसकी रचना की। गुणधर आचार्य के मुख कमल से निकली हुई चार सूत्र गाथाएं हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य। यानी इस अधिकार में चार सूत्र गाथाएं, उसके ऊपर ये दो अर्थ उदय और उदीर्णा के अधिकार है। इस वचन द्वारा संबंध गाथा के 44 वेदगम्य इस अवयव वचन का परामर्श किया है, ऐसा जानना चाहिए। अब संख्या विशेष के द्वारा अवधारण को प्राप्त गाथाओं के स्वरूप के अनुवाद द्वारा उनके अर्थ का विवरण करते हुए पृच्छा व्यावाक्य को कहते हैं। यथा, यहाँ बताए ना ये गाथाएं हैं, तो ये कौन सी है वो यहाँ बताएंगे। तम जहां का यह अनुवाद क्या है? यथा। यह सूत्र सुगम है, यानी यहाँ अभी वो गाथा बताने जाने वाले हैं। 59 नंबर डाला यहाँ। कदी आवलियम पवेसे कदी च पविष्ठन्ति कस्स आवलियम खेत्तभव काल पोगल खिलीरिवागोदय खयोरु। कितनी प्रकृतियों को उदयावली में प्रवेश कराता है। ये आवली आवली लिखा है ना, तो उदयावली के लिए यहाँ आवली लिखा है। और किस जीव के कितनी प्रकृतियां उदयावली में प्रविष्ट होती है, क्या कहते हैं, कितनी प्रकृतियों को प्रविष्ट कराता है एक बार, और कितनी प्रविष्ट होती है। अभी मैं ना डिफरेंस
कराता है,
एक कराता है और एक होती है, क्योंकि क्षेत्र भव काल और पुद्गल को निमित्त कर कर्मों का स्थिति विपाक और उदय क्षय होता है। यानी ये जो कर्मों की उदीर्ण आदि होती है उसमें बाह्य निमित्तों की बात है। यहाँ पर क्या क्या निमित्त बताए यहाँ पर, क्षेत्र का निमित्त, भव का निमित्त, काल का निमित्त और पुद्गल का निमित्त। यानी कर्म के उदय और उदीर्णा में बाह्य निमित्तों की यहाँ चर्चा है। फिर पढ़ते हैं यहाँ पर। कितनी प्रकृतियों को उदयावली में प्रवेश कराता है और किस जीव के कितनी प्रकृतियां उदयावली में प्रविष्ट होती है, क्योंकि क्षेत्र भव काल और पुद्गल को निमित्त कर कर्मों का स्थिति विपाक और उदय क्षय होता है। स्थिति विपाक होता है ना, क्या
फल मिलना ना?
नहीं देखो, उदयावली में प्रवेश कराना है ना, उदीर्णा करना, स्थिति का विपाक कराना, जल्दी वो उदय मिलाना, स्थिति जल्दी उदय मिलाना। और उदयावली में प्रविष्ट होती तो उसका उदय हो जाता है, तो उसको उदय क्षय कहा। यह प्रथम गाथा है, चार गाथाएं बताई ना, तो चार गाथाओं में से यह प्रथम गाथा है। विपाक यानी वो उदय में एक्चुअली उपेन अनुभाग का जो फल मिलता है उसको विपाक कहेंगे, समझे? स्थिति पूरी होकर उदय में आना वो उसका विपाक हुआ कहेंगे, उसको स्थिति विपाक कहेंगे। विपाक में भी अनुभाग का विपाक होगा, स्थिति का विपाक होगा, प्रदेश उदय में आएंगे, प्रदेशों का कहेंगे।
हाँ,
तो कहते हैं यथाकाल उत्पन्न, ये तो आपने प्रश्न पूछा था। यहाँ गाथा का अर्थ हम फिर दोबारा देख रहे हैं, देखना। कितनी प्रकृतियों को उदयावली में प्रवेश कराता है, कराता है की बात की, और किस जीव के कितनी प्रकृतियां उदयावली में प्रविष्ट होती है। ये रेगुलर उदय होता है, और पहले तो कराता है ने वो तो तपादी के द्वारा, जो कोई अन्य निमित्त बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी निमित्त क्या क्या है, कर्मों का उदय और विपाक उदीर्णा में कौन कौन से निमित्त है। देखो पहले हमने, आपको याद होगा अभी हमने कर्मकांड शिविर में देखा था, आठों ही कर्मों में हमने उसके बाह्य उसके निमित्त बताए थे, मेरी भाषा में उसके एजेंट, उसको कहा उसको कर्म का नो कर्म कहा था। नो कर्म है वो पूरा उसका जो द्रव्य निक्षेप होता है ना, नो कर्म नो आगम तद अतिरिक्त द्रव्य कर्म की बात, तो उसको वहां नो कर्म कहा था। एक कर्म और एक नो कर्म, यानी हर एक कर्म का जो उदय होता है, जैसे साता वेदनी का उदय चल रहा है, तो बाह्य में हम किसी वस्तु को देखकर वहां सुख की कल्पना करते हैं, या जो कुछ हो रहा है वो कल्पना में तो मोहनी भी आया, फैन चल रहा है, तो ये फैन कर्म ने नहीं लाया, परंतु ये निमित्त बना के उस कर्म का उदय हुआ। जैसे असाता का उदय चल रहा है, कोई रोग से पीड़ित है और फिर कोई औषधि मिल गई उसको, तो वो बाह्य निमित्त पाकर साता का उदय चालू हो जाएगा। इसको यहाँ विशिष्ट कर्मों का उदय में जो बाह्य जो निमित्त है उसको नौकर्म कहते हैं, कर्मकांड की भाषा में उसको नौकर्म कहा था। तो ऐसे बाह्य वस्तुओं में क्या क्या लिया यहाँ पर, क्षेत्र भव काल और पुद्गल को निमित्त बनाकर। कर्मों का स्थिति विपाक और उदय क्षय होता है। स्थिति विपाक होता है ने स्थिति उसकी घटती है ने वो जल्दी उदय में आता है, और उदय क्षय होता है ने उदय होकर वो निकल जाता है। यह प्रथम गाथा है। इस गाथा द्वारा प्रकृति उदीर्णा प्रकृति उदय, अब यहाँ प्रकृति की बात चल रही है, विशिष्ट प्रकृति का उदय और उसकी उदीर्णा, बाद में उसमें स्थिति का घटना अनुभव की प्रदेशों की बात अभी नहीं करेगी, अभी तो प्रकृति की बात चलेगी। जैसे हमने पहले वो संक्रमण में भी प्रकृतियों का संक्रमण पहले देखा है, वैसे यहाँ पर भी समझ। प्रकृति उदीर्णा प्रकृति उदय, और इन दोनों के कारणभूत द्रव्यादि का कथन किया है। कारणभूत यानी निमित्तभूत, बाह्य निमित्त। द्रव्यानुयोग की भाषा में तो कहेंगे तो कर्म अपनी योग्यता से उस रूप उदय रूप होता है जो कुछ उसकी उदीर्ण रूप होता है, परंतु यहाँ निमित्तों की चर्चा है। अब इस गाथा के अवयवों का अर्थ विवरण करते हैं, इसका एक एक शब्द लेके अभी उस पर विश्लेषण करेंगे। यथा कदि आवलियम पवे सेदी, इस प्रथम अवयव के द्वारा प्रकृति उदीर्णा कही गई है, उसका अर्थ क्या किया था, आवली में प्रवेश कराता है। आवली यानी उदयावली, यानी कराता है का अर्थ क्या है, वो उसके उदय योग्य नहीं थी परंतु उदीर्ण हो गई, क्योंकि कितनी प्रकृतियों को उदयावली के भीतर प्रयोग विशेष के द्वारा प्रवेश कराता है। इस प्रकार यहाँ उक्त गाथा सूत्र के अर्थ का अवलंबन लिया गया है। वह प्रकृति उदीर्णा दो प्रकार की है, मूल प्रकृति उदीर्णा और उत्तर प्रकृति उदीर्णा। मूल प्रकृतियों की उदीर्णा होगी तो उसको कहेंगे, और फिर एक एक प्रकृति में उसकी उत्तर प्रकृतियां भी बताएंगे। उत्तर प्रकृति उदीर्णा दो प्रकार की है, एक एक उत्तर प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति स्थान उदीर्णा। हाँ, एक एक प्रकृति उदीर्णा ने कौन कौन सी प्रकृति की उदीर्णा होती वो अलग अलग बात करेंगे, तो होगी एक एक प्रकृति उदीर्णा, और एट अ टाइम एक जीव के एक काल में कितनी प्रकृतियों के उदीर्णा होगी उसको कहेंगे वो
स्थान उदीर्णा।
जैसे हमने संक्रमण के प्रकृति संक्रमण के स्थान देखे, कितनी प्रकृतियां संक्रमित होती है, मिथ्या दृष्टि जीव की कितनी होती है, समय दृष्टि के जीव की कितनी, चौथे वाले की कितनी होती है, पांचवे हमने देखे थे ना,
स्थान देखे थे
हमने, वो तो 22 तो वो बंधने वाली थी, वो तो प्रतिग्रह प्रकृतियां थी, और संक्रमित होने वाली कितनी थी पहले गुण स्थान में,
नहीं ज्यादा
वो बंध की विच्छुति की आपको याद है,
27 का
होता है ना संक्रमण होता है,
26 का कपट, 27 26,
और जो 26 की सत्ता वाला है उसके 25 का होगा, मिथ्यात्व का नहीं होता,
नहीं होता है।
हमने देखे थे या जो अनंतानुमंडी का विसर्जन किया है तो आवली काल तक कितने का संक्रमण होगा, ऐसी जो हमने वहाँ देखी थी उसको कहेंगे स्थान। वहाँ प्रकृति संक्रमण के स्थान, इसके लिए याद दिलाया कि यहाँ उदीर्णा की बात चल रही है, तो एक एक प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति स्थान उदीर्णा। यहाँ पर शेष उदीर्णाओं के देशामर्शक भाव से इस सूत्रावयव के द्वारा प्रकृति स्थान उदीर्णा ही मुक्त कंठ होकर निर्दिष्ट की गई है, यानी उसका विशेष व्याख्यान होगा मुक्त कंठ है, उस पर ज्यादा विवेचन किया गया है। हम कहते हैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करते, वैसे वहां उसकी चर्चा की है। इसलिए प्रकृति उदीर्णा समस्त ही इस बीज पद में अंतर्निहित है ऐसा जानना चाहिए, यानी जो बीज पद है एक बताइए कि कराता है उसमें
क्या गर्भित
है, वो एक एक प्रकृति भी है और प्रकृति स्थान भी है, सब कुछ इसी में गर्भित है। कदिच पविष्यन्ति कस्स आवलियम, कदिच पविष्यन्ति और यहाँ पविष्यन्ति लिखा है, ठीक है, कदिच पविष्यन्ति कस्स आवलियम, इस दूसरे सूत्रावयव के द्वारा भी अपने उत्तर भेदों के साथ प्रकृति उदय का कथन किया है। अपने उत्तर भेद यानी कौन से कहूंगी, मूल प्रकृति उदय, उत्तर प्रकृति उदय, उसमें एक एक प्रकृति उदय और प्रकृति स्थान उदय, उसमें भी ये भेद हो गया। क्योंकि इसमें कदिच अर्थात कितनी प्रकृतियां किस जीव के आवलियम अर्थात उदयावली के भीतर उदीर्णा के बिना, ये उदय में क्या लिया, उदीर्णा के बिना स्थिति का क्षय होने से प्रवेश करती है, इस प्रकार पृच्छा का अवलंबन लिया गया है। सूत्र में तो प्रश्नात्मक बताया है और उसी में उसके उत्तर भी गर्भित है। अथवा उदयावली के भीतर प्रविष्ट हुई उदय प्रकृतियों और अनुदय प्रकृतियों को ग्रहण कर, इसका अर्थ क्या है, उदयावली जो है वर्तमान उदय के समय से लेकर एक आवली काल, उसको कहेंगे उदयावली। तो उसने काल में क्या उदय रूप प्रकृतियां होगी क्या अनुदय रूप भी होगी, दोनों होती है ना, तो वो दोनों को ग्रहण कर प्रवेश संज्ञा वाला अर्थाधिकार इस सूत्रावय के द्वारा सूचित किया गया है, उसका नाम है प्रवेश, प्रवेश अर्थाधिकार, यानी उदयावली में प्रवेश किया है। प्रवेश किया है तो वो अनुदय रूप भी हो सकता है ना वहां पर, ऐसा प्रकृति में जानना चाहिए। क्योंकि चूर्णी सूत्र में निबद्ध होकर उक्त प्ररूपणा विस्तार के साथ आगे उपलब्ध होती है, चूर्णी सूत्रकार ने इसी में से, इसी अवयव में से आगे उसका विस्तार करके समझाया। शंका, यदि ऐसा है तो वेदक अनुयोग द्वार में उदय और उदीर्णा इन दो अनुयोग द्वारों को पहले स्वीकार करके अब इन दोनों अर्थाधिकारों के अर्थाधिकारों से भिन्न प्रवेश प्ररूपणा वाले अर्थाधिकार के कथन का अवलंबन लेने पर सूत्रकार को प्रतिज्ञात अर्थ का त्याग करने का दोष लगता है, क्या कहने चाहते हैं? यहाँ तो मूल जो वेदक अर्थाधिकार है उसके दो भेद है, उदय और उदीर्णा, ये दो अनुयोग द्वार है, तो कहते हैं उसको छोड़कर प्रवेश अनुयोग द्वार बताएंगे यहाँ पर अर्थाधिकार, प्रवेश अर्थाधिकार, तो सूत्रकार से विरुद्ध हो जाएगा क्योंकि वो बताना नहीं चाहते थे और आपने बता दिया। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकार से उसका भी उदय के भीतर अंतर्भाव देखा जाता है। क्यों उदय के भीतर, हो सकता है अनुदय रूप होगी तो पर रूप से उदय में आ जाएगी, उदय तो होकर ही रहेगा, ख्याल में आता है ना, समय दृष्टि हुआ, अनंत अनुबंधी अभी पड़ा है वहाँ उदय के एक समय ऊपर, अन्य अप्रत्याख्यान आदि रूप होकर उदय में आ रहा है, या समय दृष्टि के मिथ्यात्व जो है उदयावली में है कि नहीं है, हाँ तो वो समय प्रकृति रूप से उदय में आ रहा है। अभी तक हमने संक्रमण देखा, उसमें तो उदयावली को निकाल दिया क्योंकि उदयावली में जो प्रवेश है उसका संक्रमण ही नहीं होता, तो ऊपर के संक्रमण के सब पूरा कर दिया, अब कहते उदयावली में जो जो प्रवेश कर चुके उनकी बात यहाँ चलेगी। देखो क्या कहते हैं, सूत्रकार को प्रतिज्ञात अर्थ का त्याग करने का दोष लगता है, यानी सूत्रकार को जो अर्थ बताना चाहते थे वो नहीं, ये तो चूर्णी सूत्रकार ने जो अन्य अर्थाधिकार बताया है तो चूर्णी सूत्रकार को दोष लगेगा, ऐसा उनका कहना है, इसलिए कहते कि वो दोष नहीं है क्योंकि प्रकृति उदय लिखा ना, किसी भी प्रकार से उसका भी उदय के भीतर अंतर्भाव देखा जाता है, इसलिए प्रकृति उदय और प्रकृति प्रवेश ये दो अनुयोग द्वार कदिच पविसंति कस्य आवलियम इस सूत्रावयव के द्वारा संग्रहित किए गए हैं, ऐसा यहाँ जानना चाहिए, यानी उसमें भी प्रकृति उदय कहेंगे और प्रकृति प्रवेश और एक बढ़ाया उन्होंने। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध में जो प्रकृति उदय और प्रकृति उदीर्णा प्रतिबद्ध है उनके निरहेतुक पने के निराकरण द्वारा, क्या कहते हैं, निरहेतुक यानी बिना किसी कारण से हो रहे हैं उसको कहेंगे निरहेतुक पना, तो कहते वो ऐसा नहीं है तो उसका निराकरण करें, यानी बिना हेतु के होता है ऐसा नहीं है, उसका अर्थ क्या है? हेतु से होता है, यानी निमित्त से होता है, यानी निमित्त बताएंगे। हेतु यानी निमित्त, कार्य होता है तो वहां निमित्त भी है वहां उपस्थित। तो कहते हैं निर्हेतुपने के निराकरण द्वारा, यानी वो सहेतुक है वो सिद्ध हुआ। सहेतुक है ने, क्योंकि वो तो उदय में भी आ रहा है, उदीर्णा भी हो रही है, तो किस कारण होती है? तो सहेतुपने का कथन करने के लिए गाथा के हमने अभी देखे थे ना, कौन कौन से निमित्त है?
हेत
भव काल पोगल ठिदि विभागोदय थो दू, इस पश्चिमार्ध का अवतार हुआ है। पश्चिमार्ध है ने दूसरा चरण, पहले हाफ और दूसरा हाफ, दूसरा अर्ध भाग सेकंड लाइन सूत्र की पहली लाइन, उसमें उदय उदीर्ण आ गई और उसमें वो निर्हेतुक नहीं है, उसका हेतु है, वो हेतु कौन सा है वो बताने के लिए सूत्र की दूसरी पंक्ति आ गई, उसको कहा पश्चिमार्ध। पूर्वार्ध है ने उसका पहला हाफ, पश्चिमार्ध है ने दूसरा आधा भाग, उत्तरार्ध यहाँ पश्चिमार्ध का। उक्त कथन का यह तात्पर्य है कि क्षेत्र भव काल और पुद्गलों का आश्रय लेकर, ये इतने इतने अलग अलग के कारण वहां पर उसका उदय उदीर्णा होगी। जो स्थिति विपाक और उदय क्षय होता है उसे क्रम से उदीर्णा और उदय कहते हैं। स्थिति विपाक का विपाक ने जल्दी लाए ना स्थिति, तो उसका अर्थ होता है उदीर्णा, और उदय क्षय ने उदय। तो ये क्यों होती है? तो कहते उसका निमित्त उसका हेतु बताया है, क्षेत्र भव काल और पुद्गल। अब क्षेत्रादि का अर्थ कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? क्षेत्र से उदीर्णा होती है यानी क्या होती है? यथा क्षेत्र ऐसा कहने पर नरकादि क्षेत्र का ग्रहण करना चाहिए। हम देखते हैं ये जो उदय रूप प्रकृतियां होती है, कौन से भव में कौन से क्षेत्र में, क्षेत्र भी नरक क्षेत्र जो लिया तो वहां नारकियों के कौन कौन से कर्मों का उदय होगा ये निश्चित है कि नहीं है? जैसे हम देखते ना वो नाम कर्म के भी अलग अलग उदय होते हैं, विग्रह गति में अलग प्रकृतियों का उदय, वहां पहुंचने पर अलग होता है, उसको भी हम अनुपूर्वी वगैरह को भी क्षेत्र में ले सकते हैं। वहां पहुंचने पर कितने ही प्रकृतियों का उदय है, जैसे हम देवों में नारकियों में वगैरह में तो वो ज्ञान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रशला प्रशला का उदय ही नहीं है। तो ये उदय की बात चलेगी, क्षेत्र के अनुसार भव के अनुसार यही कहते हैं। क्षेत्र कहने पर नरकादि क्षेत्र का ग्रहण करना चाहिए, भव कहने पर, भव ऐसा कहने पर एकेंद्रियादि रूप भव का ग्रहण करना चाहिए, उनमें भी कौन सी प्रकृतियों का उदय हो सकता है कौन सी नहीं ये भी निश्चित है। हर एक भव की एकेंद्रियादि में सब कुछ ले लेना, नारकियों में देवों में वगैरह। जैसे नारकियों में प्रशस्त कर्मों का उदय रहता है, नाम कर्म की भी, और देवों में प्रशस्त प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। ये सहन आदि है वो तो मनुष्य तीयों के होता है, देवों में नहीं होता है। काल ऐसा कहने पर शिशिर और वसंत आदि काल विशेष का ग्रहण करना चाहिए, अथवा बाल काल यौवन काल और स्थविर आदि काल के संबंध से। स्थविर ने वृद्धा पर, तो हम तो स्थविर ने वो स्थविर कल्पी और जिन्हें कल्पी समूह रूप को स्थविर कहा था, अलग अलग अर्थ होते हैं ना। स्थविर आदि काल के अवलंबन से उत्पन्न हुई पर्याय का ग्रहण करना चाहिए, ये उसको काल कहते हैं। तथा पुद्गल ऐसा कहने पर इष्ट अनिष्ट रूप गंध तांबूल वस्त्र और आभरण विशेष रूप स्कंध आदि द्रव्यों का ग्रहण करना चाहिए। ये बाह्य जो भी हम कहेंगे ना, पंखा है, जो कोई है, पैसा है, उसमें चाहे जितने आप डालो ना उसमें, तो बाह्य जो पुद्गलों के स्कंध है उसको यहाँ पुद्गल में ले लेना। इस प्रकार इन क्षेत्र भव काल और पुद्गलों का अवलंबन आलंबन लेकर कर्मों का उदय और उदीर्णा रूप फल विपाक होता है। क्या कहते हैं? बाह्य जो चीजें हैं क्षेत्र भव काल और पुद्गल उनका आलंबन लेकर कर्मों का उदय और उदीर्णा रूप फल विपाक होता है, यह इस सूत्र का भावार्थ है। निमित्त बताए हैं, ये नहीं कहना चाहते कि निमित्त से कार्य होता है, फिर भी निमित्त तो होता है वहां पर और उसका कथन भी होता है।
ये क्षेत्र भव और पुद्गल तो समझ जाए पर काल थोड़ा डिफिकल्ट है।
हाँ, क्योंकि
वहाँ पे वहाँ पे जो एकत्व बुद्धि हम लोग की रहती है भाव
अकेले एकत्व बुद्धि की बात नहीं चल रही यहाँ पर, आठों ही कर्मों की बात चल रही है यहाँ पर। और मोहिनी की अगर बात करेंगे उसमें
हाँ।
तो विशिष्ट काल में विशिष्ट कर्मों का उदय होगा वहाँ पर, उसमें उसकी उदीर्णा कहाँ होती है, उदय कहाँ होता है, बात करेंगे। आठ वर्ष तक समय तो क्यों नहीं होता।
So, यहाँ पे स्वकाल लेना।
स्वकाल कौन सा, हम यहाँ उपादान की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ निमित्त की बात कर रहे। स्वकाल तो उपादान में हर एक चीज अपने अपने स्वकाल में हो रही है, उसकी कहाँ चर्चा है। यहाँ चर्चा तो निमित्तों की हो रही है। हाँ अभी
नहीं, तो वो तो पुद्गल में जाएगा ना, पर काल
नहीं, वो भी काल में। अभी जैसे बहुत ठंडी का मौसम है और पंखा का चलना तो वही का वही पुद्गल है, फिर काल में वो अलग कार्य कर रहा है ना, ठंडी के मौसम में वो अलग कार्य कर रहा है, असाता के लिए वो निमित्तभूत हो रहा है, और गर्मी में वो तो साता के लिए निमित्तभूत हो रहा है। तो पक्ष बदल रहा है क्या, क्या हो रहा है। जो दवा की गोली किसी का बुखार मिटा दे वही किसी की एलर्जी रूप हो जाता है। या जैसे ठंडी के मौसम में जो कोई हम अन्य अन्य पदार्थ भी खाते हैं ना, ये क्यों ऐसे किसी मौसम में विशिष्ट क्यों खाते हैं, कोई गर्मी करता है, कोई ठंडी करता है, जो शीत करता है, ये सब बाह्य निमित्त में ले लेना। उसके कारण होता है ऐसा नहीं, परंतु यहाँ हेतु की ही चर्चा चल रही है, निमित्तों की ही चर्चा चल रही है। जैसे कुदेव आदि का निमित्त से सम्यक तो नहीं होगा, ये बाह्य निमित्त है, निमित्त से कुछ नहीं हो रहा है, वो जीव स्वयं उसका। अपन यहाँ उपादान की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। हाँ सभी वो तो सब काल में ले ली ना, वैसा उदीर्ण क्यों नहीं करता अभी कर्मों की, अभी क्षय क्यों नहीं करता इस काल में, तो उसमें अन्य अन्य निमित्त भी। हाँ मूल कारण योग्यता पर पहुंचेंगे हम, पर यहाँ बाह्य निमित्तों की चर्चा होती है कि नहीं उसको बताया भी जाता है, क्योंकि निमित्त को देखकर हमें कार्य का भी पता चलता है, और वहाँ कार्य होने में दोनों ही कारण होते हैं तो उसका दोनों का ज्ञान भी कराया जाता है। ज्ञान किया इसलिए उससे कार्य हुआ, अरे क्या करे वो बाह्य निमित्त को ढूंढना है अभी कैसे लाना, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यानी द्रव्यान योग अभी अपना पक्का है, तो ये निमित्तों का कथन सुनकर कहीं डामाडोल तो नहीं होने वाले हैं। अभी जिसको ये द्रव्यान योग का पता नहीं है वो फिर निमित्तों की चर्चा सुनते अरे मुझे ये करना है वो करना है इससे हो जाएगा। देखो अथवा आगे, अथवा कदि आवलियम पवेश द्वारा प्रकृति उदीर्णा नाम वाला, बाला हुआ क्या, नाम वाला पहला अर्थाधिकार, तथा कदि च पविसंति कस्य आवलियम, इस द्वारा उदय और उदीर्णा के सिवा प्रकृति प्रवेश नाम वाला यह दूसरा अधिकार कहा गया है। पहला प्रकृति उदीर्णा नाम का है और दूसरा है प्रवेश अधिकार, प्रकृति प्रवेश। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध में उद्धकार अफार अस्पष्ट है, पूर्वार्ध में दो ही अर्थाधिकार प्रतिबद्ध है, एक उदीर्णा अर्थाधिकार और प्रकृति प्रवेश। पुनः गाथा के खेत भव काल पोगल ठिदि विवागोदय खयोदु इस पश्चिमार्ध के कारण सहित कर्मोदय नामक अधिकार प्रतिबद्ध है, कर्मोदय ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चूर्णी सूत्रकार मुक्त कंठ होकर आगे इसी प्रकार कथन करने वाले हैं। एक उदीर्ण अर्थाधिकार होगा, एक प्रकृति प्रवेश वाला और एक कर्मोदय नाम का अधिकार होगा। शंका, यह गाथा का पश्चिमार्ध कर्मोदय का वाचक कैसे है, यहाँ तो वो निमित्त हेतु बताए हैं, तो ये कर्मोदय का उसमें से अर्थाधिकार क्यों निकाल रहे हैं? समाधान, क्षेत्र भव काल और पुद्गलों का आश्रय लेकर जो स्थिति क्षय लक्षण कर्म का विपाक होता है वह उदय है। स्थिति क्षय लक्षण यानी जिसकी स्थिति का क्षय हो जाता है, स्थिति पूरी हो जाती है और उसका कर्म का विपाक होता है वह उदय है। यानी यहाँ निमित्त के कारण कर्मों का उदय बताना है, तो कर्म का उदय मुख्य है, बताया निमित्त और कहेंगे कर्म का उदय। तो क्षेत्र भवकाल और पुद्गलों का आश्रय लेकर जो स्थिति क्षय लक्षण कर्म का विपाक होता है वह उदय है। इस प्रकार व्यवहित संबंधवश सूत्र के अर्थ का व्याख्यान करने से यह गाथा का पश्चिमार्ध कर्मोदय का वाचक है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। वहाँ तो हेतु बताए उसके, परंतु वो कर्मोदय का कथन करने वाले हैं, ये बात यहाँ सिद्ध होती है। ये चार गाथाएं कौन सी है वो इसको यहाँ बता रहे हैं। 59-60 अभी पहले निकाल के देखनी पड़ेगी, पहले पहले बीच में कुछ गाथाएं आई थी। हाँ, मगर इतने 23 वगैरह से आगे नहीं गए थे हम, मुझे अभी ये याद नहीं है बीच की गाथाओं के नंबर। तो 180 टोटल कुछ थी ना टोटल, उसमें से 59 नहीं, अभी जो ये जो चार गाथाएं ने 59, 60, 61 और 64 ये गुणधर आचार्य ने लिखे हुए मूल गाथाएं। ये तो पहले हो चुकी है अपने, पहले जो 58 हो गई है, आप पहली पुस्तक निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा, उसका विस्तार से वर्णन वहां किया था, कहां कितनी गाथाओं में क्या क्या कौन कौन से अर्थ अधिकार निकलते हैं, उसकी बहुत चर्चा की थी हमने विस्तार से। पहली पुस्तक निकाल के पढ़ना आप। अभी हम देख रहे हैं चार पृष्ठ पर, नहीं ये तो
छह नंबर,
पांच का हो गया, छह पर आ गए हैं। नई गाथा यहाँ पढ़ेंगे अभी हम 60 नंबर की। को कदम आए थिरिये पवेश गो को वके अनुभागे शांतर निरंतरम वा कदिवा समयादुबोधवा। कौन जीव किस स्थिति में और कौन जीव किस अनुभाग में कर्मों का प्रवेश कराने वाला है, कराने वाले की बात, किस स्थिति में और किस अनुभाग में, यानी वो कितनी वो स्थिति घटाएगा और कितना अनुभाग घटाएगा उसकी बात चल रही है, यानी किस रूप में उसका अनुभाग का उदय होगा उदीर्णा होगी, तथा इनका सांतर और निरंतर काल और अंतर। पहले तो काल बताए, लगातार काल निरंतर काल कितना होगा, बीच बीच में अंतर सहित काल कितना होगा, और एक बार होने पर फिर दोबारा हो गया उसमें अंतर कितना होगा, तो अंतर कितने समय तक होता है यह जानने योग्य है। लिखा ना नीचे, सांतर निरंतरम वा कदिवा समयादु बोध हुआ, यह दूसरी गाथा स्थिति उदीर्णा अनुभाग उदीर्णा और प्रवेश उदीर्णा के विषय, प्रदेश उदीर्णा के विषय में प्रतिबद्ध है। पहले तो प्रकृति उदीर्णा कहेंगे ना, वो मूल प्रकृति की उदीर्णा उत्तर प्रकृति की उदीर्णा पहले बता चुके हैं, अब यहाँ स्थिति की अनुभाग की और प्रदेशों की उदीर्णा। जैसे हमने बंध में देखे थे चार प्रकार, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, हर एक में उसकी बात चलेगी, सत्व में भी चलेगी, उदीर्णा भी चलेगी, उदय में भी चलेगी। तो यहाँ स्थिति उदीर्णा अनुभाग उदीर्णा और प्रदेश उदीर्णा के विषय में प्रतिबद्ध है। यथा को कदमाए ठिदे पवेश को, इस प्रकार इस प्रथम अवयव के द्वारा स्थिति उदीर्णा सूचित की गई है, यानी वो कराता है, यानी इस विशिष्ट जो रेगुलर होती है उसकी बात नहीं है, विशेष प्रयोग से जो उदीर्णा होती है उसकी वहां चर्चा चलेगी। कोवा के अनुभागे, इस प्रकार इस द्वितीय अवयव के द्वारा भी अनुभाग उदीर्णा कही गई है, तथा इसी पद में प्रदेश उदीर्णा भी निर्दिष्ट की गई है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि स्थिति और अनुभाग प्रदेशों के अविनाभावी होते हैं। कितने प्रदेश हुए, कितने प्रदेशों की, कितने कर्मों की, कितने परमाणुओं की स्थिति घटी, कितने का अनुभाग घटा, तो उसमें प्रदेशों की चर्चा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रदेशों के बिना स्थिति और अनुभाग किसका कहेंगे, तो उसको भी प्रदेशों की बात इसमें गर्भित है। अथवा देशामर्शक न्याय से उसका यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस गाथा के पूर्वार्ध द्वारा स्थिति उदीर्णा, अनुभाग उदीर्णा और प्रदेश उदीर्णा के स्वामित्व की प्रमुखता द्वारा पृच्छा की गई है। चूनी सूत्रकार तो इसका अर्थ निकाल के खोलेंगे, यहाँ तो पृच्छात्मक है, तथा इसी द्वारा स्थिति उदय, अनुभाग उदय और प्रदेश उदय तथा उनका प्रवेश, प्रवेश यानी वो आवली में प्रवेश कराना, उदय आवली में सूचित किया गया है, क्योंकि देशामर्शक भाव से यह वचन यानी गाथा का पूर्वार्ध प्रवृत्त हुआ है, यानी उसके गाथा के पहली पंक्ति में से इतने सारी बातें यहाँ निकली। सांतर निरंतरम वा, ये बोधवा तक जो पंक्ति है, अर्थात प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश चारों लिए हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के विशेषता को प्राप्त हुए उदय और उदीर्णा का सांतर और निरंतर काल कितना है, इस प्रकार इस पृच्छा वाक्य के द्वारा नाना जीव और एक जीव संबंधी काल और अंतर प्ररूपना सूचित की गई। ये समझ में आती बात, किसी प्रकृति का निरंतर उदय है क्या, सांतर है, तो लगातार कितने काल तक होगा, नहीं होगा तो कितना अंतर पड़ेगा, एक जीव की अपेक्षा अंतर अलग हो गए, नाना जीवों की अपेक्षा अलग हो गए, तो ये एक जीव की अपेक्षा काल और अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा काल और अंतर, ये इसमें से सारा निकलेगा। तथा यहाँ आए हुए अनुक्त का समुच्चय करने वाले, अनुक्त ने जो नहीं बताया है वो अनुक्त, उक्त ने जो बताया जाता है, और अनुक्त नहीं लिखा है परंतु उसमें वो अर्थ निकलता है, गर्भित है। अनुक्त का समुच्चय करने वाले दूसरे वा शब्द के द्वारा, पहले लिखा था निरंतरम वा कदी वा समया, वो दूसरी बार बार डाला उन्होंने, उसके द्वारा समुत्कीर्तना आदि शेष अनुयोग द्वारों की प्ररूपणा सूचित की गई है। यहाँ तो काल और अंतर दो ही अनुयोग द्वार बताए हैं, परंतु हम हमेशा देखते हैं कि समुत्कीर्तना से लेकर कितने अनुयोग होते हैं, तो उन सभी अनुयोग द्वार इसमें से निकलेंगे। इसलिए यथा संभव उदय और उदीर्णा को विषय करने वाले समुत्कीर्तना से लेकर अल्प बहुत्व तक 24 अनुयोग द्वारा का सूचन इस वचन के द्वारा किया गया है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। दो ही पंक्ति है और उसमें उदय की भी 24 अनुयोग द्वार, उदीर्णा के भी 24 अनुयोग द्वार निकल रहे हैं। केवल उदय उदीर्णा नहीं, वो तो प्रकृति का, प्रदेश का, स्थिति का, अनुभाग का, सब। अब जो उन्होंने बताई हुई तीसरी गाथा जो 61 नंबर की है, यथा में बता रहे हैं ना, चार गाथाएं पहले लिखी उन्होंने, उसका विवेचन और किसमें से कौन से अनुयोग निकले हैं उसकी बात यहाँ बता रहे हैं, उसको देखते हैं अभी यहाँ पर। बहुगदरम बहुगदरम से काले कोनुतो वररम वा अनुसमय उदीरेन्तो कदिवा समयम उदीरेदी। विवक्षित समय से तदनंतर समय में कौन जीव बहुतर बहुतर कर्मों की उदीर्णा करता है और कौन जीव अल्पतर अल्पतर कर्मों की उदीर्णा करता है, तथा प्रति समय उदीर्णा करता हुआ यह जीव कितने समय तक निरंतर उदीर्णा करता है, ये तो पृच्छात्मक ही सारे है, उसमें से ही सारे अनुयोग द्वार निकलेंगे। आपको समझ में आया था, पहले कम है बाद में ज्यादा है, भुजगार होगा और फिर अल्पतर होगा। यह तीसरी गाथा है, इस विषय संबंधी तीसरी गाथा। इस द्वारा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विषयक अपने भेदों के साथ, इन्हें हर एक में लगाएंगे, भुजगार अनुयोग द्वार निर्दिष्ट किया गया है। इन्हें पहले कम प्रकृतियों की करता था, फिर बाद में अधिक प्रकृतियों की उदीर्णा करें तो भुजगार होगा, ये प्रकृति की बात है। कितने स्थितियों की करता है, कितने अनुभाग की करता है, कितने प्रदेशों की करता है, हर एक में भुजगार अनुयोग द्वार चलेगा। यथा विवक्षित समय से काले अर्थात तदनंतर समय में बहुतर बहुतर कर्मों की कौन उदीर्णा करता है, इस प्रकार इस द्वारा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विषय भुजगार पद का निर्देश किया गया है। कौन थोवदरगम वा इस प्रकार इस वचन द्वारा भी थोवदरगम वा इस वचन द्वारा भी तद विषयक अल्पतर पद का ज्ञान करा गया। यहाँ पर अनुक्त का समुच्चय करने के लिए आए हुए वा शब्द के द्वारा अवस्थित और अवक्तव्य पदों का ग्रहण करना चाहिए। हमने हमेशा देखा था कि 24 अनुयोग द्वारों के उसके साथ साथ और ये भुजगार अल्पतर संबंधी भी अनुयोग द्वार होते हैं, उसी की यहाँ बात हो रही है। इसलिए गाथा के पूर्वार्ध द्वारा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विषय भुजगार अनुयोग द्वार की प्ररूपना की गई है, यह सिद्ध होता है। एक ही लाइन में ये सभी बातें बताई, भुजगार अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य। अनुसमय उदीरेंतो अर्थात प्रत्येक समय में भुजगार आदि रूप से उदीर्णा करता हुआ यह जीव कदिवा समय अर्थात कितने समय तक निरंतर उदीर्णा करता है, इस प्रकार इस वचन के द्वारा भुजगार विषय काल अनुयोग द्वार सूचित किया गया है। लगातार बढ़ता हुआ अगर उदीर्णा करता है तो वो तो लगातार का भुजगार का लगातार का काल बताएंगे, तथा इसी देशामर्शक वचन के द्वारा शेष अनुयोग द्वारों का भी संग्रह किया गया है। कौन से हो गए शेष अनुयोग द्वार?
अल्पतर,
हाँ, पद निक्षेप और वृद्धि निक्षेप नहीं है, वृद्धि होता है, भुजगार पद निक्षेप और वृद्धि अनुयोग द्वार, ऐसे हम तीन बताते ना पहले, तथा इसी वचन द्वारा आई बात यानी भुजगार में काल भुजगार में अंतर ये बाकी अनुयोग द्वार, समझ में, जो भुजगार का अनुयोग द्वार है उसमें ही भुजगार का स्वामित्व कौन है, वो लगातार काल कितना है, उसमें अंतर पड़े तो कितना पड़ता है, ये बात बताएंगे, और वो अन्य अनुयोग द्वार, तथा इसी वचन द्वारा ये आई बात आगे पद निक्षेप और वृद्धि अनुयोग द्वार की प्ररूपणा की गई है। पद निक्षेप में याद है क्या क्या हमने देखा था अभी तक? हाँ, उत्कृष्ट वृद्धि होती है, जघन्य होती है, हर एक में वो बताए होती है, इतना बताएंगे फिर उसका स्वामी बताएंगे। और वृद्धि में वो कौन सी वाली वृद्धि है, अनंत भाग है कि असंख्यात भाग है कि असंख्यात गुना क्या है, उसकी बात यहाँ बताएंगे, वो वृद्धि का प्रमाण बताएंगे। क्योंकि भुजगार विशेष का नाम पद निक्षेप है और पद निक्षेप विशेष का नाम वृद्धि है, ऐसा न्याय। ये तीसरी गाथा में से ये भुजगार संबंधी सभी अनुयोग द्वार निकलेंगे। अब इसमें से जो चौथी गाथा है, मूल गाथा, जोजम शंका मेरी जम बंद विजम च जो उदिरेरी तम केन होई अहियम खिदि अनुभागे पते सगे। जो जीव स्थिति अनुभाग और प्रदेशों में से जिसे संक्रमित करता है, जिसे बांधता है और जिसे उदीरित करता है, वह किससे अधिक होता है? अभी इसका स्पष्टीकरण बताएंगे और इसमें से कौन कौन से अनुयोग द्वार निकलते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। यह चौथी मूल गाथा है। जघन्य और उत्कृष्ट पदों से विशेषता को प्राप्त हुए, जघन्य उत्कृष्ट प्रदेशों से पदों से विशेषता ने प्रकृति की बात करेंगे तो जघन्य उत्कृष्ट प्रदेशों की अनुभाग की और स्थिति की। प्रकृति में तो जघन्य उत्कृष्ट नहीं होता है, कौन कौन सी है, कितनी कितनी है, उसमें उसके नंबर में हो सकता है। तो कहते हैं प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश विषयक बंध संक्रम उदय उदीर्णा और सत्कर्मों के अल्प बहुत्व की गवेषणा करना इसका वक्तव्य। इन्हें कितना बड़ा नियोग होगा, यानी जघन्य संक्रमण, जघन्य उत्कृष्ट संक्रमण, वो जघन्य स्थिति संक्रमण, उसमें भी स्थिति संक्रमण अनुभाग सब में लगाना। ये प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश में, ये किसमें किसमें लगाना, बंध में भी, संक्रमण में भी, उदय में भी, उदीर्णा में भी और सत्कर्म में भी। ये पांच है ना, बंध, संक्रम, उदय, उदीर्णा और सत्कर्म। यानी वो कहाँ जघन्य होगा, कहाँ उत्कृष्ट होगा, उसमें भी कौन कौन सी प्रकृति पर, उत्तर प्रकृतियों पर भी घटित करेंगे, उसकी गवेषणा करना इसका वक्तव्य है। यथा जोजम शंका मेरी, ऐसा कहने पर संक्रम का ग्रहण करना चाहिए और वह जघन्य और उत्कृष्ट पद से विशेषता को प्राप्त होकर प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश भेद से अनेक प्रकार का ग्रहण करना चाहिए। अभी तक तो हम संक्रमण का विस्तार से देख रहे हैं, प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण, प्रदेश संक्रमण देखा है अभी हम। ठिदि अनुभागे पदे सज्ञ इस वचन द्वारा यहाँ पर प्रकृति का ग्रहण नहीं प्राप्त होता इसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के बिना स्थिति अनुभाग और प्रदेशों का अभाव होने से प्रकृति अनुक्त सिद्ध है। नहीं बताने पर भी वह है ये बात सिद्ध होती है। जोजम बंधधि इस प्रकार इस वचन द्वारा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों के भेद से अनेक प्रकार के बंध का ग्रहण करना चाहिए। चार प्रकार के बंध यहाँ बताएंगे और उसकी भी विशेषताएं बताएंगे सर। तथा यहीं पर सत्कर्म के अंतर्भाव का भी व्याख्यान करना चाहिए। तथा जमच जो उदीरेदी इस प्रकार इस वचन के द्वारा भी प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों के भेद से अनेक प्रकार की उदय के साथ उदीर्णा का ग्रहण करना चाहिए। यानी अनेक प्रकार की जो उदीर्णा होती है उदय के साथ वाली, उसको ग्रहण करना है। तम केन हो यही हम, ऐसा कहने करने पर बंध, संक्रम, उदय, उदीर्णा और सत्कर्म रूप विकल्पों के मध्य किससे कौन कितना अधिक होता है, यह पृच्छा की गई है। उसमें भी आपस में वो तुलनात्मक बताएंगे आप कौन ज्यादा है। ठिदि अनुभागे पदे सज्ञे यह सूत्रावय सत्कर्म और उदय सहित बंध, संक्रम और उदीर्णा के विषय को दिखलाने के लिए आया है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। यानी कौन किससे अधिक है तो उस किस किस में लगाना है, तो स्थिति अनुभव वो सब 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 में लगाना। यहाँ पर प्रकृति का कथन असंभव है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर पूर्व में दे ही दिए, पूर्व में ही दे आए। यानी यहाँ ठिदि अनुभाग और प्रदेश कहा है तो प्रकृति का नाम नहीं लिया, तो प्रकृति तो है ही, क्योंकि उसके बिना ये किसके हो गए। इसलिए बंध, संक्रम, उदय, उदीर्णा और सत्कर्म, इस प्रकार इन पांच भेदों के, जघन्य का जघन्य के साथ और उत्कृष्ट का उत्कृष्ट के साथ, प्रकृतियों, स्थितियों, अनुभागों और प्रदेशों का अवलंबन लेकर अल्पबोध की प्ररूपणा की गई है। क्या कहना चाहते हैं? अभी प्रदेशों की बात, पहले प्रकृति की बात करेंगे। तो कितने प्रकृतियों अभी बंध में, उत्कृष्ट बंध और जघन्य बंध, वो उत्तर प्रकृतियों में लगा लेंगे, कहाँ उत्कृष्ट होता है कहाँ जघन्य होता है। फिर संक्रम में भी लगाएंगे, कहाँ उत्कृष्ट जघन्य होता है, या अकेले इन्हें एक प्रकृति पर पांच लगाएंगे, या प्रकृति पर लगाए बंध, फिर प्रदेश पर लगाएंगे, स्थिति पर लगाएंगे, अनुभव पर। यानी यहाँ हमारे पास क्या है, चार है ना, प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश, और उसमें किसमें किसमें लगाना है, वो पांच में लगाना है। यानी वो 20 प्ररूपणाएं होगी अल्पबोध पर। समझ में आई बात? एक एक में चार चार लगाना है, बंध में भी चारों का वर्णन है, और उसमें भी जघन्य का अलग, उत्कृष्ट का अलग, जघन्य का जघन्य के साथ, उत्कृष्ट का उत्कृष्ट के साथ। यानी भी प्रकृति की बात की, तो प्रकृति में बंध, जघन्य, उत्कृष्ट कितना होगा, फिर उसका संक्रमण होगा, उदय, उदीर्णा, ये तो बताएंगे, फिर वो किसका ज्यादा है किसका कम है वो भी बताएंगे। यानी प्रकृति के बारे में बंध अधिक है कि संक्रमण अधिक है कि उदय अधिक है कि उदीर्णा अधिक है कि सत्व अधिक है, ये बताएंगे। प्रदेश में भी लगाएंगे, स्थिति में लगाएंगे, अनुभाग में लगाएंगे। इस प्रकार यह चौथी सूत्र गाथा का अर्थ यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार इन सूत्र गाथाओं का अवतार करके, ये तो पहले में पहले कहां से निकला है, ये सारा अभी आने वाला जो है चर्चा आने वाली है, इन चार मूल गाथाओं से निकली है, तो उसकी अवयव का क्या अर्थ और वहां कौन सा अनुयोग निकला है, ये बात अभी बताएं। इस प्रकार इन सूत्र गाथाओं का अवतार करके अब यहाँ पर प्रथम गाथा का व्याख्यान करते हुए चूर्णी सूत्रकार यह गाथा इस अर्थ विशेष में प्रतिबद्ध है ऐसा जतलाने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। अभी जो हमने प्रथम गाथा देखी थी, कौन सी थी वो, 59 नंबर की तीन पृष्ठ पर मैंने कितनी प्रकृतियों को उदयावली में प्रवेश कराता है, कितनी उदयावली में प्रविष्ट होती है, और उसमें क्षेत्र भव काल और पुद्गल का निमित्त होता है, उसकी बात आई थी। अब उस पर यहाँ चूर्णी सूत्रकार सूत्र बताएंगे। तथ्य पढ़मिल्ल गाहा पैड़ी उदीर्णाए पैड़ी उदये च बद्धा। उनमें से प्रथम गाथा प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति उदय में प्रतिबद्ध है। अभी अभी हमने देखा ना, पहली लाइन से क्या निकलता है, दूसरी में से क्या निकलता है, उसमें से प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति उदय निकलेगा। यह सूत्र गतार्थ है, यानी इसका अर्थ पहले आ चुका है, क्योंकि उक्त गाथाओं के उत्थानिका रूप अर्थ की प्ररूपणा के द्वारा ही प्रकृत अर्थ का समर्थन कराए है। यानी यहाँ जो वीरसेन आचार्य ने उसकी चर्चा यहाँ की थी ऑलरेडी। इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा प्रथम गाथा प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति उदय में प्रतिबद्ध है, इस बात का सामान्य से ज्ञान करा के अब पदच्छेद की प्रमुखता से प्रथम गाथा के किस पद में प्रकृति उदीर्णा प्रतिबद्ध है तथा किस पद में प्रकृति उदय प्रतिबद्ध है, इस प्रकार इस विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। वो भी पहले बता चुके हैं, पहले मैं पूरे सूत्र में क्या निकलता है वो बताया, अब कौन से शब्दों से कौन सा अर्थ निकला ये बताएंगे, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्होंने बताया था, अब यह चूर्णी सूत्रकार स्वयं बता रहे। कदी आवलियम पवेसे दीप्ति एस गाहाय पढ़म पादो पयड़ी उदीर्णाय। ये जो गाथा का प्रथम बाद है यहाँ लिखा ना नीचे देखो, कदी आवलियम पवेसेदी, यह गाथा का प्रथम पाद प्रकृति उदीरणा में प्रतिबद्ध है। ये पहला पाद है ना, उसके चार चरण करेंगे तो उसका पहला एक पहली पंक्ति के दो भाग करेंगे, ये पहला भाग उसका। यहाँ प्रतिबद्ध है इस पद का अधिकार के साथ संबंध करना चाहिए। प्रकृति उदीर्णा में प्रतिबद्ध है ने? उस पाद से गाथा के उस शब्दों से प्रकृति उदीर्णा नाम का अर्थाधिकार निकला है। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार गाथा के प्रथम अवयवों में प्रकृति उदीर्णा की प्रतिबद्धता का कथन करके फिर भी उसी में विशेष अर्थ का निर्धारण करने के लिए यह वचन कहा है, तो वहां तो प्रकृति उदीर्णा वहां से उसमें से निकलता है अर्थ, फिर और भी उसमें बताएंगे। एदम पुण सुत्तम पयरिठान उदीर्णाय बद्धम। परंतु यह सूत्र प्रकृति स्थान उदीर्णा में प्रतिबद्ध है, यानी उसमें भी प्रतिबद्ध है, क्योंकि भेदों की गणना करने वाला कति शब्द अनर्थक नहीं हो सकता। कितनी ऐसा कुछ निकाला था ना, कति शब्द निकला था वहां पर, कितने ऐसी बात आई थी, यानी उसमें से भेदों का कथन हो जाता है। तात्पर्य है कि प्रकृति उदीर्णा दो प्रकार की है, मूल प्रकृति उदीर्णा और उत्तर प्रकृति उदीर्णा। उत्तर प्रकृति उदीर्णा दो प्रकार की है, एक एक प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति स्थान उदीर्णा। इनमें से यहाँ पर प्रकृति स्थान उदीर्णा में यह सूत्र प्रतिबद्ध है, अन्यत्र नहीं। प्रकृति स्थान ने एट ए टाइम कितनी प्रकृतियां उसका उसकी उदीर्णा होती है वो तो कहेंगे ना, पहले तो क्या निकला कहाँ से उसकी बात है, उसका स्वरूप क्या है वो तो भी बताने वाले। शंका, यदि ऐसा है तो मूल प्रकृति उदीर्णा और एक एक प्रकृति उदीर्णा इनकी प्ररूपणा यहाँ पर नहीं बनती, क्योंकि गाथा सूत्र द्वारा उनका संग्रह नहीं किया गया है। समाधान, तो कहते कि ये तो मूल प्रकृति उदीर्णा और एक एक प्रकृति उदीर्णा का कथन यहाँ नहीं बन सकता। फिर कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि देशामर्शक न्याय से उनका भी उसमें संग्रह हुआ है, यानी वो भी उसमें गर्भित है। एदम तावत ठवणीयम, परंतु इसे स्थगित करना चाहिए, यानी इसकी बात नहीं करते हुए अन्य की बात करेंगे। प्रकृति स्थान उदीर्णा से संबंध रखने वाले इस सूत्र पद को स्थगित करना चाहिए, क्योंकि एक एक प्रकृति उदीर्णा की प्ररूपणा किए बिना उसकी प्ररूपणा नहीं हो सकती। एक एक प्रकृति की बात करेंगे, किसकी किसकी उदीर्णा होती है, तो फिर कहेंगे ना एट ए टाइम कितने की होगी, अब उसकी बात यहाँ करेंगे। एक एक पयड़ी उदीर्णा दुविहा, एक एक मूल पयड़ी उदीर्णा च, एक एक उत्तर पयड़ी उदीर्णा च। एक एक प्रकृति उदीर्णा दो प्रकार की है, एक एक मूल प्रकृति उदीर्णा और एक एक उत्तर प्रकृति उदीर्णा। मूल प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियों के भेद से भेद को प्राप्त हुई एक एक प्रकृति उदीर्णा सर्वप्रथम व्याख्यान करने योग्य है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। पहले सूत्र में से कौन कौन से अर्थाधिकार निकलते उसकी बात की है, उदीर्णा की बात यहाँ पहले ले लेंगे और उसमें भी प्रकृति उदीर्णा की चर्चा होगी, और उसमें मूल प्रकृति उदीर्णा और उत्तर प्रकृति उदीर्णा में से एक एक की बात चलेगी, एक एक मूल प्रकृति और एक एक उत्तर प्रकृति। ऊपर पढ़ा था मैं, एक एक पैड़ी उदीर्णा दुविहा, एक एक मूल पैड़ी उदीर्णा च, एक एक हाँ च च पढ़ा था दो बार। अब आगे वाला सूत्र, एदानी वेवी पत्तेगम चौवीस चौवीसम अनियगत दारे ही मग्गीऊन। वेवी है कि बेवी है, इन दोनों ही प्रकार की उदीर्णाओं को पृथक पृथक 24 संयोग द्वारों के आश्रय से अनुमार्गण करके मग्गीऊन अभी आधा ही छोड़ा है ना, उसका अर्थ करके फिर आगे का पूरा करेंगे सूत्र। यानी ये जो दो है कौन से,
एक
एक मूल प्रकृति उदीरणा और एक एक उत्तर प्रकृति उदीरणा, इन दोनों के पृथक पृथक अपने अपने अलग अलग
24
संयोग द्वार होंगे। कहाँ से कहाँ तक होते हैं?
अल्प बहुत लास्ट आएगा।
पहला समुद कीर्तना से लेकर अनियोग अल्प बहुत तक 24 हो गए। उसके आश्रय से अनुमार्गण करके पहले इसका अर्थ बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक प्रकृति से संबंध रखने वाले इन दोनों ही अधिकार वस्तुओं का पृथक पृथक 24 संयोग द्वारों के आश्रय से अनुमार्गण करके इसके बाद कदी आवलियम पवेसेदी इस सूत्रावयव के अर्थ का व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि उक्त दोनों अनुयोग द्वारों का व्याख्यान किए बिना उक्त सूत्र वचन के व्याख्यान का अवसर नहीं है। वो कराता है ना, पवेसेदी ने कराता है। इस प्रकार यह इस सूत्र का भावार्थ है। वे 24 संयोग द्वार कौन से हैं ऐसा पूछने पर समुत्कीर्तना से लेकर अल्प बहुत पर्यंत ये 24 संयोग द्वार है ऐसा कहा है। पहले भी बताया था उन्होंने वैसे। अब ये सूत्र तो उन्होंने बाद में पूरे करेंगे, पहले वो उसकी बात करेंगे कि उसको पृथक पृथक वर्णन करना चाहिए। अब यथासंभव इन अनुयोग द्वारों का आश्रय लेकर मूल प्रकृति उदीरणा और एक एक उत्तर प्रकृति उदीरणा का कथन इस सूत्र से प्राप्त हुए उच्चारणा के बल से बतलाते हैं। अभी जो ये हमने सूत्र बताया था वो तो चूर्णी सूत्रकार का है, उन्होंने तो 24 अनुयोग द्वार पृथक पृथक होते ही इतना बताया। अब उच्चारणाचार्य ने उच्चारणा लिखी उसके ऊपर, तो उन्होंने इसके नाम बताया अलग अलग। तो ये उच्चारणा के आश्रय से बताएंगे, उच्चारणा के बल से बतलाते हैं। यथा यानी वो सूत्र आधा छोड़कर पहले यहाँ की बात चलेगी, इसको विस्तार से समझाएंगे फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। उदीरणा चार प्रकार की है, प्रकृति उदीरणा, स्थिति उदीरणा, अनुभाग उदीरणा और प्रदेश उदीरणा। प्रकृति उदीरणा दो प्रकार की है, मूल प्रकृति उदीरणा और उत्तर प्रकृति उदीरणा। मूल प्रकृति उदीरणा के ये 17 अनियोग द्वार हैं। समुत्कीर्तना, सादि अनादि, ध्रुव अध्रुव और स्वामित्व से लेकर अल्प बहुत्व तक अब समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ये बताएंगे वहां पर अभी। मूल प्रकृति के उदाहरण, हाँ हम देखते हैं ना सर्व नो सर्व वगैरह वगैरह, तो उन्होंने थोड़े ही लिए उसमें, उसका काल लेंगे अंतर लेंगे वो सब उसमें आएंगे। एक जीव की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा, ये सभी अनुयोग द्वार हो गए उसमें। अब ये मूल प्रकृति में तो ये तो जैसे उत्तर प्रकृतियों में लगता है वैसे इसमें कुछ कुछ बातें नहीं लगेगी। तो समुत्कीर्तन अभी बता रहे मूल प्रकृति के ऊपर, समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। ये आसान है ना कि बहुत फास्ट हो रहा है?
नहीं नहीं आसान है, पर
ये तो इसमें कुछ गणित नहीं कुछ नहीं है क्या? समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोहनीय के उदीरक और अनुदीरक जीव है बताना, ये उसका समुत्कीर्तना का कार्य है। होते हैं इतना बताया, उदीरक भी होते हैं और अनुदीरक भी होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, आदेश से नारकियों में मोहनीय के उदीरक जीव है, इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, मनुष्य पर्याप्त और देव सब देवों में जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। मैंने सभी को ले लिया।
अनुरुद्ध खाली मनुष्य में लिए, मनुष्य त्रिक में लिए
नहीं, जैसे ओग से है वैसे ही मनुष्य त्रिक में है। इसका अर्थ क्या है?
नहीं, मनुष्य त्रिक में उन्होंने अनुदीरक तीनों में लिए।
सब में होते हैं
तीन प्रकार के। मनुष्य त्रिक में,
मनुष्य में अनुदीरक भी बताए ऐसा।
मनुष्य त्रिक में मीन्स सामान्य, ये मनुष्य त्रिक बताया ना,
मनुष्य त्रिक में होते हैं सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं।
मनुष्य नहीं, अच्छा अपर्याप्त कुछ नहीं, अपर्याप्त नहीं लिया, मनुष्य त्रिक
आगे लिया ना, अपर्याप्त मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त।
अच्छा वो
उदीरक में लिए, आदेश में लिए है, यानी ओग का कथन मनुष्य त्रिक में घटित होता है। ये बात बताना चाहते हैं। ये तो सारी बातें स्वामी तो वगैरह बताएंगे ना, तभी उसका खुलासा होगा, और अभी तो है इतना ही बता रहे हैं। सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोहनीय कर्म के उदीरक जीव क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है? तो कहते हैं सादी है, अनादि है, ध्रुव है और अध्रुव है, चारों बताए। आदेश से नारकियों में मोहनीय कर्म के उदीरक जीव क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है? तो कहते हैं सादी है और अध्रुव है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथा योग्य जान लेना चाहिए। अब इसका विशेषार्थ बताएंगे तो ये क्या कहना चाहते वो बात ख्याल में आ जाएगी। विशेषार्थ, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक मोहनीय कर्म की उदीरणा अनादि है और सम्यक दृष्टि जीव के उपशम श्रेणी से उतरने पर उसकी उदीरणा सादी है। मूल प्रकृतियों की अपेक्षा बात चल रही, मोहनीय इन जनरल बात चल रही, तथा वह अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव और भव्यों की अपेक्षा अध्रुव है। इसलिए यहाँ पर मोहनीय के उदीरक जीव ओघ से अनादि, सादि, ध्रुव और अध्रुव कहे गए हैं, किंतु नरक गति आदि चारों गति मार्गणाएं सादी और शांत है। कोई भी मार्गणा अनादि से नहीं है, एक जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं तो सादी शांत है। इसलिए इनमें मोहनीय कर्म के उदीरकों को सादी और शांत कहा है। शेष कथन सुगम है। अब स्वामित्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का, ये स्वामित्व में अपने को ख्याल में आ जाएगी बात। ओग और आदेश, ओग से मोहनीय कर्म की उदीरणा किसके होती है? तो कहते अन्यतः सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होती है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मोहनीय कर्म की उदीरणा किसके होती है? तो कहते अन्य तर के होती है। वहां ऐसा नहीं कहा कि मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि के होती है, क्योंकि ये जो अपर्याप्त है मनुष्य और तिर्यंच अपर्याप्त, उनमें तो मिथ्या दृष्टि ही है, तो उनमें सब में हो रही है, और वहां सारे सम्यक दृष्टि ही है उनमें भी हो रही है, तो उसमें सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं कथन करेंगे। उनमें होती है ऐसा किसी के भी होती है, सबके होती कहेंगे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, यानी वो यहाँ स्वामित्व में मात्र मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि इतनी बात उठा हुआ। अब कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। भोग से मोहिनी की उदीर्णा का कितना काल है? तीन भंग है, उनमें से जो सारी शांत भंग है उसकी अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। शादी कब हुआ था?
उपशम श्रेणी,
उपशम श्रेणी उतरते थे, उदीर्णा चालू हो गई ना, पहले रुक गई थी, उदीर्णा चालू हो गई, अभी फिर अंतर्मूर्त में उपशम श्रेणी चढ़ के फिर उतरेगा।
तो शांत
शादी और शांत का अंतर्मूर्त काल घटित कैसे होगा? उपशम श्रेणी उतरा तो उदीर्णा चालू हो गई, फिर चढ़ते चढ़ते उपशमित हो गया, ऊपर चढ़ा तो उदीर्णा बंद हो गई। वहां संक्रमण भले चालू है परंतु उदीर्णा बंद हो गई उसकी। उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन कैसा होगा?
एक बार
पहली बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है और फिर
अंत में जाके
उपशम श्रेणी चलेगा, शपक करेगा, क्षय करेगा। आदेश से नारकियों में मोहिनी की उदीर्णा का कितना काल है? तो जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, जितनी स्थिति है उतने काल तक उसकी उदीर्णा होती रहेगी। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में जानना चाहिए। मनुष्य त्रिक में मोहिनी की उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है। मनुष्य त्रिक में मोहिनी की उदीर्णा, बोलो कैसे होगी? एक समय
उदीर्णा का जघन्य काल एक समय,
हाँ।
श्रेणी से उतरा एक समय के उदीर्णा हो गया, मर गया,
मर गया। उपशम श्रेणी चढ़ के उतरते समय उदीर्णा शुरू हो गई, एक समय में मर गया, तो मनुष्य पर्याय बदल गई ना, देव में चला गया, तो मनुष्य में एक समय घटित होगा। इसलिए कहते मनुष्य त्रिक में मोहिनी की उदीर्णा का जघन्य काल एक समय बताए। और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है, ये मनुष्य में रहने का उत्कृष्ट काल है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, क्योंकि ये सम्य ऋषि मिथ्य ऋषि दोनों के होता है, तो ये हम वो काल जो उसके भव का है, काय स्थिति का, उसको ले सकते हैं। तो उसी को फिर समझाया कालानुगम को विशेषार्थ में। ओग से मोहनीय कर्म की उदीर्णा के काल के तीन भंग हैं। अनादि अनंत किसके हो गए? अभव्यम। अनादि शांत हो गए के जब वो श्रेणी चढ़ता है तब, और सादी शांत उपशम श्रेणी उतरा तो सादी हो गई और फिर वो क्षपक करेगा या उपशम करेगा तब फिर शांत होगा। अभव्यों के और अभव्य समान भव्यों के अनादि अनंत भंग होता है। जो भव्य जीव उपशम श्रेणी पर प्रथम बार चढ़कर उसके अनुदीरक होते हैं, उनके अनादि शांत भंग होता है। और जो जीव उपशम श्रेणी से उतरकर पुनः उसकी उदीर्णा करने लगते हैं, उनके सादि शांत भंग होता है। शांत कहाँ कहा है ना?
उसका अंत हो ही जाएगा ना, घटित हो
जाएगा, ऐसा नहीं, शांत कहना चाहिए ना, सादि बताया उन्होंने। उपशम श्रेणी से उतरकर पुनः उसकी उदीर्णा करने लगते हैं,
उसके सादी बंद हुए,
वो तो सादी हुए, फिर भी अभी वो अंत होने वाला है जल्दी या देरी से, तो इसलिए सादी शांत कहेंगे। ये उतरा है तो शांत हो, सादी हो गई,
होने वाला है पक्का,
अभी वो नक्की होने वाला है तो सादी शांत होगा, फिर वो सादी शांत का छोटा काल और बड़ा काल बताएंगे। यथा ऐसा जीव कम से कम अंत, ये आगे बताया है, यथा ने क्योंकि ऐसा जीव कम से कम अंतर्मूर्त काल तक और अधिक से अधिक कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक इसका उदीरक हो सकता है, अतः इसका जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल उपार्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। आदेश से चारों गतियों में जो काल कहा है वह स्पष्ट ही है, वो गतियों का काल उसका जो अपना अपना उस भव का, एक एक भव का जो उत्कृष्ट काल है वो उत्कृष्ट उदीरक है, जितना जघन्य वो जघन्य काल कहेंगे, क्योंकि गति मार्गणा है तो वो सादी शांत है, एक जीव की अपेक्षा देख रहे हैं ना, मात्र मनुष्य त्रिक में जघन्य काल एक समय उष्म श्रेणी से उतरते समय एक समय उदीरक होकर जो मरकर देव हो जाता है उसकी अपेक्षा कहा है। अभी अंतरानुगम हम कल देखेंगे क्योंकि उसका उसका विशेषार्थ के साथ पढ़ना चाहिए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवानी मस्त नमो सदा देत
नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सप्तसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सप्तसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सप्तसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सप्तसावणम।